मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 7 अप्रैल 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 10 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं कुलदीप जाट इंदौर मध्य प्रदेश से, शिव पूजन मिश्रा बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, विनीत कुमार सिंह वाराणसी से, प्रखर श्रीवास्तव इलाहाबाद से, पंकज कुमार त्रिची से, शिशुवेंद्र सिंह कानपुर से, अवधेश कुमार मंडल मधुबनी से, अमर सिंह लखावत मथुरा से, शुभम कुमार जायसवाल मऊ उत्तर प्रदेश से और शैलेंद्र कुमार जौनपुर से। तो कुलदीप, शिवपूजन, विनीत, प्रखर, पंकज, शिशुवेंद्र, अवधेश, अमर सिंह, शुभम और शैलेंद्र, आप सभी 10 नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही मित्रों, विशेष रूप से जो स्टूडेंट सितंबर अक्टूबर के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उन्हें मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप मान करके चलें कि आपका रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया है, लेकिन एक प्रकार से एक ऑडियो क्लास की भी शुरुआत हो चुकी है। ऑडियो क्लास की शुरुआत कहने का मतलब यह कि ये जो डेली ऑडियो गाइडेंस जा रहा है, जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस जा रहा है, डेफिनेटली वो सभी श्रोताओं के लिए है, किसी के भी सबके एक्सेस में है, कोई भी इसे सुन सकता है और इससे फायदा ले सकता है यदि उसे ऐसा लगता है तो, ये उनकी अपनी च्वाइस है। लेकिन जो स्टूडेंट सितंबर अक्टूबर की क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके लिए मैं समझता हूं कि उन्हें अपने इस च्वाइस के अधिकार को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसे अपने लिए अनिवार्य बना लेना चाहिए कि नहीं, अब हमारी ऑडियो क्लासेस शुरू हो गई हैं और हमें डेली इस ऑडियो को सुनना है। दोस्तों, यह बात मैं विशेष रूप से इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इस बार का जो हमारा फोर्थ बैच था, निसंदेह रूप से हमारे जितने भी बैच रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बैच, सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे रहे हैं। सभी के साथ गुजारे गए 15 दिन अभी भी स्मृतियों में तरोताजा बनी हुई हैं और जब वो दिन गुजर रहे थे लग रहा था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं और आज भी लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा किया, सबने मिलकर किया। लेकिन मित्रों, जो फोर्थ बैच था, नो डाउट फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच और फोर्थ बैच लगातार एक प्रकार से बेहतरी की ओर बढ़ते चले गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो आगे के बैच होंगे वो इनसे भी बेहतरी की तरफ ही हम चलेंगे, क्योंकि लगातार अपने आप को बेहतर बनाना ही किसी भी व्यक्ति का या किसी भी संस्था का लक्ष्य होना चाहिए। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो जो मैं निष्कर्ष निकाल पाया हूं मित्रों, वह यह है कि फर्स्ट बैच को ऑडियो से जुड़ने का उतना लंबा मौका नहीं मिला था, सेकेंड बैच को उससे थोड़ा लंबा मौका मिला, थर्ड बैच को उससे थोड़ा लंबा मिला और फोर्थ बैच को काफी लंबा समय मिल गया कि वो ऑडियो के माध्यम से खुद को तैयार कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि फोर्थ बैच अपने को बहुत अच्छे से तैयार करके आया था और उसकी यह तैयारी डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से हुई थी, इसलिए उसका जो परफॉर्मेंस यहां रहा वो बेहतर रहा। और मैं अभी भी देख रहा हूं कि जो मेरे पास मेल आ रहे हैं उसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेल में कुछ लॉजिक मिल रहे हैं, कुछ थॉट्स मिल रहे हैं, कुछ प्रोवोकेशंस मिल रहा है, मतलब उन मेल में भी थोड़ी अलग तरह की मैच्योरिटी मिल रही है। और नो डाउट इसमें मुझे लगता है कि डेली ऑडियो के प्रति शायद उनका जो समर्पण भाव है, उनकी जो निष्ठा है, उनका जो जुड़ाव है और उसमें बताई गई बातों के प्रति जो एक एक्शन लेने की जो भावना है उसका एक रोल जरूर रहा होगा। नो डाउट कि मैं यह डेवलपमेंट अपने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बैच के स्टूडेंट्स में भी देख रहा हूं। उनकी भाषा में चोर हो रही है, उनके थॉट्स में बदलाव दिखाई दे रहे हैं और खुद वो अपने जीवन के बदलाव की कहानियां भी सुना रहे हैं। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि यदि स्टूडेंट्स क्लास में आने से पहले यदि इस डेली ऑडियो से एक लंबे दौर से जुड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे वो अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे, बदलाव हो जाएगा। और जब वो इस तरीके से एक बदलाव की पृष्ठभूमि को लेकर यहां भोपाल आएंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये 15 दिन की क्लासेस उनके लिए ज्यादा अच्छा कर सकेगी। इसलिए मित्रों, मैंने कहा कि जो स्टूडेंट सितंबर अक्टूबर में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, प्लीज वो अब इसे ऑप्शन मान करके न चलें कि उन्हें डेली ऑडियो सुनना है या नहीं सुनना है। ये इसे एक अनिवार्य प्रश्न मान करके चलें कि यह आपको सॉल्व करना ही करना है, बल्कि इतना अनिवार्य मान लें कि यदि आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो बाकी बचे हुए जो भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे उनका मूल्यांकन ही नहीं होगा। तब आप देखेंगे कि आपने जिस विश्वास के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है, एकेडमी के प्रति जो अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाकर उनसे अनुमति प्राप्त की है, मुझे लगता है कि आप उन पैमानों पर, उन कसौटियों पर अपने आप को ज्यादा खरा साबित कर सकेंगे। तो मित्रों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। दोस्तों, एक बड़ी परेशानी होती है, जो कम्युनिकेशन का जो स्किल होता है वो बड़ा विचित्र सा होता है। जो बोलने वाला है वो उसके दिमाग में ढेर सारी चीजें होती हैं, उसको लगता है कि मैं ये जो बात कह रहा हूं उसे इस रूप में समझा जाएगा, लेकिन वो उसकी अपनी समझ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसे उसी रूप में समझे, उतने व्यापक संदर्भों में उसे ले पाए। उसके पास अपने दिमाग की अपनी पृष्ठभूमि होती है, उसके पास अपने अनुभव होते हैं, उसकी अपनी स्मृतियां होती हैं, यहां तक कि उसकी अपनी आवश्यकताएं भी होती हैं। और हम किसी भी चीज को, किसी भी बात को केवल अपने ही इन्हीं स्मृतियों, अनुभवों, आवश्यकताओं के संदर्भ में समझते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी नहीं कि बिल्कुल एकदम उसी समानांतर स्तर पर हो जिस समानांतर स्तर पर किया जा रहा है। मेरे पास एक बहुत अच्छा मेल आया है, बहुत प्यारा मेल आया है, गगन वार्ष्णेय का, जिन्होंने, जो दिल्ली से हैं। आपको ध्यान होगा कि दो तीन दिन पहले के लाइफ मैनेजमेंट में जब मैं प्रत्यूषा बैनर्जी के सुसाइड केस के मामले में जब आप लोगों से डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने एक बात के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की थी, कुछ कुछ आश्चर्य भी व्यक्त किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं तो बिना उसके बारे में अच्छी तरह से जाने बिना ही ये फैसला ले लेते हैं। ये मैंने इस बारे में बात कही थी कि जैसे हम ये मान करके चल रहे हैं कि प्रत्युषा ने अगर सुसाइड किया तो शायद वो बॉयफ्रेंड के वफादार न रहने पर किया, बेवफा हो जाने पर किया, या उसने हत्या की। अब ये तो सब चीजें सामने बाद में आएंगी, लेकिन अब कम से कम ये मान करके चल रहे हैं कि शायद यही कारण रहा होगा, बेवफाई ही शायद कारण रही हो। फिर ये सुनने में आ रहा है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि उसके और गर्ल्स फ्रेंड रहे, ऐसे इस तरह की ढेर सारी बातें सुनने को मिलती हैं। चलिए, सच्चाई जो भी हो, घटना घट चुकी है, वो तो सच है। मित्रों, इस पर लेकर के गगन वार्ष्णेय ने अपनी थोड़ी सी एक जिज्ञासा व्यक्त की है और उनकी जिज्ञासा बहुत बहुत जायज है, क्योंकि उन्होंने अभी जो सूफी सम्मेलन हुआ था तो सूफी सम्मेलन पर एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने यही कहा था कि सूफी आना जो इश्क होता है वो आप लोग जानते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने भी बात की थी, वो तो प्रेम पर ही आधारित है। ईश्वर को हम नहीं जानते लेकिन उससे बेइंतहा प्यार करते हैं। और यहां मैंने कहा है कि कैसे आदमी उसके साथ जिंदगी भर गुजारने का फैसला कर लेता, कर सकता है, जब तक कि वह उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता नहीं है। मित्रों, ये एक कम्युनिकेशन गैप है, मैं इसे बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और गगन वार्ष्णेय ने भी ये अनुरोध किया है कि सर इसको क्लियर करें, क्योंकि उन्हें इस बात का अफसोस है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लेख को स्टूडेंट गलत तरीके से समझें और उनका गलत प्रभाव पड़े। तो मुझे लगता है कि मेरा भी दायित्व तो बनता है गगन के साथ साथ कि मैं उस चीज को क्लियर करूं, तो मैं इस पर थोड़ी सी बातें आज आप लोगों से करना चाहूंगा। मित्रों, जिंदगी कभी भी रेल की पटरी पर नहीं चलती है, जिंदगी तो लाखों करोड़ों पगडंडियों पर चलती है, और सच पूछे तो वहां भी चलती है, उन रास्तों पर भी चलती है जहां पगडंडियां नहीं होती, कोई एक चलता है और वहां पगडंडी बन जाती है, मतलब लोग अपनी अपनी पगडंडियां भी बनाते हैं। जीवन की इस विराटता को, जीवन की इस नवीनता को हमें स्वीकार करना चाहिए। एक लाइन पर चलने वाली ये गाड़ी नहीं है, इस विराटता को स्वीकार कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर कोई भी एक चीज ज्यों की त्यों फिट नहीं बैठती है, क्योंकि पटरी नहीं है। हर चीज, हर वाक्य, जीवन का हर सिद्धांत, जीवन का हर लम्हा, जीवन की हर समस्या आपसे एक नए तरह के समाधान की मांग करती है। बड़े मोटे फार्मूले उस पर लागू हो जाते हैं जो हमको मालूम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मोटे फार्मूले या जो बहुत ही सिद्ध फार्मूले हो सभी पर लागू हो सके, सवाल ही नहीं उठता है। यहां जो मैंने बात कही कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जब तक आप उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते नहीं, आप फैसला कर लें कि उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। मित्रों, इसके दो पक्ष हैं। सच में आप वेस्ट में जाकर के देखें तो बड़े आश्चर्य से कहते हैं कि यार सच में कैसे अरेंज मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, बल्कि सच पूछे तो अरेंज मैरिज क्या, वो तो यहां तक कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी एक औरत के साथ गुजार ले और एक औरत अपनी पूरी जिंदगी एक आदमी के साथ बिता दे, ऐसा कैसे संभव है। उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके पास संस्कारों की, संस्कृति की जो चेतना होनी चाहिए उसकी भूमि है ही नहीं। इसलिए सवाल गलत और सही का नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं और हम सही हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने ढंग से सही हैं, हम अपने ढंग से सही हैं। वो उस रूप में सोच ही नहीं सकते, बल्कि सच पूछिए तो सोचने से भी अधिक वो महसूस ही नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहां किसी आप महिला से बात कीजिए तो कहेगी कि अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत कई कई बार शादी करे, कई कई पतियों से शादी करे, तलाक ले। उसको इस बात पर आश्चर्य होता है। इसमें सही और गलत का सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ इस बात का है हमारी चेतना, जो चेतना है, ये चेतना है यानी कि हमारी जो मिट्टी है वो कैसी है, क्योंकि मिट्टी के अनुसार ही उसमें वनस्पति पैदा होगी। अगर वो रेत है तो वहां नागफनी पैदा होंगे, बेर और आपके ये झाड़ झंखाड़ पैदा होंगे, लेकिन अगर वो बहुत उपजाऊ जमीन है तो वहां धान की खेती हो सकती है, गेहूं की खेती हो सकती है, सरसों के फूल लहला सकते हैं। और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, प्रकृति की दृष्टि से गेहूं और धान भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की नागफनी है, क्योंकि नागफनी की अपनी जो विशेषता है कि पानी को लंबे समय तक अपने अंदर रख सकती है। धान को तो लंबे समय तक पानी ही चाहिए, वो तो पानी में ही रहती है, वो पानी को रख ही नहीं पाती। तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो जो चिंतन की इस विराटता को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जीवन की अगर आप विराटता को स्वीकार करते हैं तो चिंतन की भी विराटता होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर चिंतन की विराटता नहीं है तो फिर जीवन की विराटता हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीवन क्या है, वो चिंतन ही है। मित्रों, अब मैं इसके थर्ड स्टेज पर आता हूं और वो ये स्टेज है कि अगर हमें चयन का अधिकार मिला है तो, यदि हमें चयन का अवसर मिला है तो, इसका मतलब है कि अब आपको एक अवसर दिया गया है कि आप इस पर तार्किक रूप से फैसला कीजिए। तो वहां अवसर अगर आपको मिला है तो अवसर किस लिए मिला है, इसीलिए ना कि भाई अच्छे से जांच लीजिए, अच्छे से परख लीजिए, एक दूसरे को अच्छे से समझ लीजिए, इसीलिए तो मौका मिला है। और जो अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में आपको मौका नहीं है, आपको दिया गया है। दोस्तों, आप सोच करके देखिए, क्या हम माता पिता का चयन करते हैं, क्या हम अपने भाई बहन का चयन करते हैं, दादा दादी नाना नानी का चयन करते हैं, इन सब का हम चयन नहीं करते, लेकिन हम इनके साथ कैसे रहते हैं, कैसे निभाते हैं, जैसे कि हमारे अपने ही हैं। हमने तो उनके बारे में कोई सोचा समझा नहीं था, लेकिन हम उन्हें स्वीकार करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये हमारे अपने हैं, ये हमें दिए गए हैं। ठीक इस तरीके से जो अरेंज मैरिज होता है, वो अरेंज मैरिज जो होती है उसमें चीजें दे दी जाती हैं, और जब कोई चीज दे दी जाती है तो आप उसे स्वीकार करते हैं। वहां जो स्वीकार्य का भाव है, जो एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो बहुत हाई लेवल पर होता है। उसमें दूसरी चीज होती ही नहीं, वहां आप लॉजिक पर नहीं आ जाते, आप इफ बट आइदर नाइदर पर नहीं जाते हैं। वहां तो यह है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, बस यही मेरे भाग्य में था, ईश्वर ने यही मुझे दिया है, यही प्रकृति की देन है, यही मेरी नियति है, इसे मुझे स्वीकार करना है। और जब आप किसी को भी नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं तो अस्वीकार और असंतोष का भाव खत्म हो जाता है, लॉजिक खत्म ही हो जाते हैं। और याद रखिए, जिस क्षण आपके दिमाग में संबंधों को लेकर लॉजिक आने शुरू हो जाएंगे, जिस क्षण हम संबंधों की समीक्षा करनी शुरू कर देंगे, आप मान जाइए कि संबंधों के समाप्त होने की शुरुआत हो गई है। लाल बत्ती जल चुकी है, प्लीज बी अलर्ट, सतर्क हो जाइए। ड्रॉप योर दैट लॉजिक माइंड, आप अपने उस तार्किक दिमाग को छोड़ दीजिए। होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो लव मैरिजेज होती हैं, तो जब तार्किक मस्तिष्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि भैया अच्छे से सोच समझ लो, जांच परख लो, तब तो उसका इस्तेमाल नहीं होता। उस समय तो सब अच्छी अच्छी बातें दिखाई देती हैं। और शादी के बाद जब लॉजिक माइंड को खत्म कर देना चाहिए और सिर्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया ना, बात खत्म हो गई, तब फिर वो लॉजिक माइंड शुरू होता है कि भैया तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मुझे वो कहा था, अब तुम ऐसा कर रहे हो। जैसे शादी नहीं हुआ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो चूंकि वहां मैरिज एक संविदा के रूप में हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो भैया कभी भी टूट सकता है, तो वहां टूटन खूब होती है। लेकिन यहां तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट है, बन गया, संबंध बन गया, ये टूटना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि टूटते नहीं है, ये टूटते तो है लेकिन बहुत मुश्किल से टूटते हैं। और अगर टूटते भी हैं दोस्तों, तो इसमें जितना दर्द शामिल होता है अरेंज मैरिज में, उतना दर्द उसमें शामिल नहीं होता। इसीलिए तो अब हम सभ्यता और संस्कृति के उस लेवल पर पहुंच गए हैं जबकि ब्रेकअप पार्टी का जश्न मनाया जाता है। ब्रेकअप पार्टी का जश्न आपने इस फिल्म में भी देखा होगा जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, की एंड का में, जब वो बताता है कि मेरे एक दोस्त को मैं सांत्वना देने गया था, वैसे जा उसका ब्रेकअप हो गया था, तो करीना यही कहता है कि अरे इसमें तो ये तो खुशी की बात थी कि उसकी जिंदगी बच गई या उसकी आजादी बच गई, कुछ इस तरह से। तो जहां आप अपनी अपनी आजादी की ही बात करेंगे तो आप फिर ये सोच, आप कैसे आप दूसरे के एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे को एक्सेप्ट करने का मतलब ही है कहीं ना कहीं अपने आजादी को छोड़ना, समर्पित करना। जब तक आप अपनी आजादी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे तब तक आप दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर सकते, और आप दूसरे को उसी लेवल तक स्वीकार कर सकेंगे जिस लेवल तक आप अपनी आजादी छोड़ने को तैयार होंगे। तो आजादी और स्वीकृति ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, जो अरेंज मैरिज होती है वो पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित होती है, इसलिए लंबे समय तक टिकती है क्योंकि संबंध भावनाओं वाले ही टिकते हैं। जबकि जो लव मैरिजेज होती हैं, शुरू में भावनाओं का आवेश होता है, बाद में तार्किकता चलने लगती है, और नतीजा ये होता है कि धीरे 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 उनमें ढीलापन आने लगेगा, फिर टकराव होने लगेगा, और टकराव होने के बाद फिर वो अंत में टूटकर अलग हो जाएंगे। तो मित्रों, मुझे लगा कि ये बात मैं आप लोगों के सामने रखूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न था वो गगन वार्ष्णेय ने उठाया था, और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मित्रों, मैं चाहूंगा कि आपको, आप जब भी मैं अपनी बात कुछ इस तरह से रखता हूं उसमें आप लोगों को कोई डाउट होते हैं, आप अपने थॉट्स भी रखिए, अपने विचार भी रखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के मैं मेल देख रहा था तो मुझे इस मेल को देख करके सबसे अच्छी बात यह लगी कि ढेर सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपनी अपनी समस्याओं को शेयर किया। ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि लोग इस तरीके से अपने अपने विचार रख रहे हैं। जैसे पूजा राजपूत ने अपने विचार रखे, जो एनडीटीवी पर मेरा, खासकर ये प्रत्युषा बैनर्जी को लेकर के ही जो आत्महत्या हुई थी उस पर मेरा जो ब्लॉग था, उन्होंने अपने विचार रखे। और भी मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, वो अपने अपने विचार अपने अपने ढंग से रख रहे हैं। अर्जुन परमार ने एक घटना को लेकर के अपने ढंग से अपनी बात कही, सेजल कुमार अपने ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, मनीष झा अपनी शिकायत को अपने ढंग, अपनी समस्या को अपने ढंग से पेश कर रहे हैं। तो इसमें फिर मेल में मजा आता है कि हाँ, ये मेल जो है ये वास्तव में अलग अलग तरीके की चीजें हैं, तो वो मेल गुलदस्ता बन जाता है जिसमें अलग अलग तरह के फूल मौजूद हो, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि सारे फूल तो एक साथ मुरझाते नहीं है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब मैं आता हूं कल के एआईआर न्यूज पर। मैंने थोड़ा सा 3-4 मिनट वक्त इसके लिए ज्यादा ले लिया, और उसका कारण यह भी था कि एआईआर न्यूज में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी तो मैंने उधर इस्तेमाल कर लिया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मित्रों, जो न्यूज तो सच पूछिए कि कल कुछ ऐसी विशेष नहीं थी, लेकिन एक दो चीजें तो होती ही हैं जिनको मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पहली खबर, आपने देखा कि भारत और चीन के संबंधों को लेकर के फिर एक नई चीज हमें दिखाई दे रही है। अब आप देख रहे हैं कि भारत और चीन के संबंध जो लगभग काफी अच्छे से चल रहे थे, 2-3 इशू हैं जो भारत और चीन के संबंधों को खासकर गड़बड़ कर देते हैं, आप कह लीजिए तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो अक्साई चाइना का जो हिस्सा है उसको लेकर के विवाद रहता है, बॉर्डर का विवाद कह लीजिए। फिर आप देखते हैं कि नेपाल और चीन जो बहुत नजदीक आकर के फिर भारत को घेरने की कोशिश करते हैं, वो भी एक है, जबकि भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हैं। अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जब चाइना गए तो वहां जो समझौते हुए और फिर से वो हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जो जमाने की कोशिश कर रहा है वो फिर एक तरीके से तनाव का कारण बन जाता है, हिंद महासागर। उसी तरह से दक्षिण चाइना सागर है, वो भी एक तनाव का कारण बन जाता है। आप फिर ये भी देखते हैं कि जो चीन है वो खासकर पाकिस्तान और इधर नेपाल, इन सब देशों को लेकर के एक जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की भाषा में कहते हैं कि भारत को समुद्र के चारों तरफ घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत को भी उसे संतुलित करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, एक अलग तरीके की बड़ी सूझबूझ का परिचय देना, डिप्लोमेटिक सूझबूझ का परिचय देना पड़ता है। तो ये सब कारण हैं जो भारत और चीन के संबंधों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बना देते हैं, ये कोई इतना आसान रास्ता नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि अब जो भविष्य जो दिखाई दे रहा है, चाइना और इंडिया दो सुपर इकोनॉमी पावर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं और एशिया के तो ये दो सबसे बड़े देश अभी भी हैं, तो वो भी एक कारण है कि जो एक जेलस जैसी चीजें दिखाई देती, ईर्ष्यागत जैसी चीजें दिखाई देती हैं। और उसी को लेकर के अभी जो घटना घटी हम इसी पृष्ठभूमि में उसे देख सकते हैं। घटना बहुत सिंपल से है, आपने मसूद अजहर का नाम सुना है जिसको भारत आतंकवादी मानता है। भारत ने प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ में कि इसको प्रतिबंधित किया जाए, प्रतिबंधित हो भी जाता है ना, उसकी एक सुरक्षा परिषद होती है, आपको मालूम होगा, एक तो जनरल बॉडी होती है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए और अच्छा होगा कि आप उसे आज पढ़ भी लें। वो स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि एक जनरल बॉडी होती है जिसमें सभी देश मेंबर होते हैं और इसके बाद उसकी एक छोटी सी काउंसिल होती है, सुरक्षा परिषद होती है, जिसमें 5 तो परमानेंट मेंबर ही हैं जो कभी भी नहीं बदले जाते और बाकी कुछ मेंबर्स होते हैं वो लगातार 2 साल के बाद बदले जाते हैं। जो 5 मेंबर हैं जो परमानेंट मेंबर हैं इनको वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि यदि इसमें से एक भी मेंबर अगर किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर दे, अस्वीकार कर दे, तो फिर वो चाहे 4 मेंबर सुरक्षा परिषद के इसको एक्सेप्ट करें, बाकी मेंबर भी एक्सेप्ट करें, या पूरा का पूरा जो जनरल असेंबली है वो भी पास करना चाहे तो नहीं मान्य होगा। इस मामले में लगभग वही हुआ। लगभग क्या मतलब, बिल्कुल यही हुआ कि भारत ने मसूद अजहर को एक प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था लेकिन उसे चाइना ने वीटो कर दिया। चाइना यानी कि उसे आतंकवादी गुट नहीं मान रहा है, आतंकवादी नहीं मान रहा है, तो प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं समझ रहा है। और आपको मालूम है कि डेफिनेटली चूंकि चाइना और पाकिस्तान के संबंध अभी बड़े घनिष्ठ होते जा रहे हैं, चीन की भी कोशिश है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान को अपने नजदीक ला सके। और पाकिस्तान को भी आप देख रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान की पीठ पर अमेरिका का बहुत जबरदस्त हाथ था, हाथ अभी भी है, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका को लगने लगा है कि नहीं, चीन के साथ पाकिस्तान के साथ तो बहुत लंबे संबंध नहीं निभा पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब विश्व के सामने ये बात स्पष्ट होने लगी है कि जो पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों को करने दे रहा है, ये लगभग पूरी दुनिया को महसूस होने लगा है। तो ऐसे में अब अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है कि वो चीन को उतना ही दोस्त बनाकर चले, तो पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाकर चले तो पाकिस्तान भी अब अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा आशंकित होने लगा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का भी झुकाव चीन की तरफ होने लगा है और चीन इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान शुरू से भारत का विरोध करता ही रहा है और चीन भारत का प्रतिद्वंदी है ही, तो कहा जाता है ना, जो कि हमारे चाणक्य ने भी कहा कि जो शत्रु का जो शत्रु होता है वो हमारा मित्र होता है, तो चीन भारत का शत्रु है और भारत का शत्रु पाकिस्तान है तो वो चीन का मित्र हो गया। एक सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सेप्ट तरीका आप इसको मत मान करके चले, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो शत्रु और मित्र की भाषा में बात नहीं करते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं की भाषा में बात करते हैं। तो इस स्थिति में ये जो घटना हुई है वो भारत और चीन के संबंधों को थोड़ी सी तनावपूर्ण बनाने वाली घटना है। लेकिन आपने देखा कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जयशंकर जी, उन्होंने कहा है कि नहीं, इसमें परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत की नीति है कि वो अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दे रहा है और चीन बट नेचुरल कि भारत का पड़ोसी देश है, तो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, ये स्थिति संभल जाएगी, हम फिर से इसके लिए कोशिश करेंगे। मित्रों, जो दूसरी खबर थी, आपने देखा है कि एक शब्द आया आपने, मंत्रिमंडल कैबिनेट ने कई चीजों को, कई योजनाओं को, कई निर्णय लिए हैं। मैं कैबिनेट के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, जो कैबिनेट होता है वो सच पूछे तो सही मायने में वही सरकार होती है जिसमें कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं और डेफिनेटली जो स्टेट रैंक के भी मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है तो वो जब उनका इशू आता है तो वो इसमें भाग लेते हैं। तो कैबिनेट ही बेसिकली सरकार होती है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो कैबिनेट खुद ले लेती है और उसी को एक तरह से सरकार का निर्णय माना जाता है। एक तरह से क्या, वो होता ही सरकार का निर्णय है। और यहां तक कि जो विधेयक भी पेश किए जाते हैं तो पहले कैबिनेट में डिसीजन लिया जाता है कि इस पर विधेयक लाना है, और जब विधेयक बनकर के तैयार हो जाता है तो संसद में पेश किए जाने से पहले भी फिर कैबिनेट उस विधेयक पर विचार करती है। विचार विमर्श करने के बाद जो भी उसको चेंजेस करने होंगे उनमें चेंजेस किए जाते हैं और तब फिर वो फाइनली पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो ये जो कैबिनेट का जो डिसीजंस होते हैं इसके बारे में आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सरकार कोई भी कानून, नियम या निर्णय बिना विधेयक के नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें होती हैं जो विधेयक के माध्यम से होती हैं, लेकिन ढेर सारे जो डे टू डे के जो दूसरे निर्णय होते हैं वो बकायदे कैबिनेट ही अपने लेवल पर ले सकती है, उसके लिए ऑथराइज्ड वो होती है। तो कैबिनेट के निर्णय की जब भी बात हो आप मान करके चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि वो सरकार का ही निर्णय है। मित्रों, एक चीज आपने और न्यूज में देखी होगी कि धीरे धीरे आप देखिए कि कैसे छोटी छोटी चीजों पर भी न्यायालय का न्यायालय पर के पास लोग जाने लगे हैं। इसलिए न्यायालय के पास जनहित याचिका दायर की गई है कि बहुत से राज्य जहां जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ है, गरीबी की हालत में, वहां मनरेगा का पैसा कई सालों से उनको नहीं मिल रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पैसा नहीं मिल रहा, इसके लिए न्यायालय फैसला दे रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि साहब महाराष्ट्र में इतना सूखा पड़ा हुआ और वहां आईपीएल का मैच कराया जा रहा है जहां 60 लाख लीटर पानी लगेगा, जबकि वहां पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, और उस पर भी न्यायालय को अपनी टिप्पणी देनी पड़ रही है कि भैया वहां आप करा लीजिए मैच जहां पर पानी हो, यहीं कराने की क्या जरूरत है, ये टिप्पणी करना पड़ रहा है न्यायालय को। वीरभद्र सिंह जी को अरेस्ट न किया जाए, वो मदद करें एजेंसीज की, इसके लिए न्यायालय को निर्णय देना पड़ रहा है। प्रवेश करें या नहीं करें महिलाएं मंदिर में, जो एक धार्मिक मामला है, उसके लिए न्यायालय को निर्णय देना पड़ रहा है। इसमें अब आपके पास दो चीजें हैं कि ये न्यायालय जबरदस्ती हस्तक्षेप कर घुसपैठ कर रहा है या लोग उसके पास जा रहे हैं। आप देखेंगे बहुत स्पष्ट रूप से कि इसमें लोग न्यायालय के पास गए हैं। न्यायालय अपनी तरफ से भी संज्ञान ले सकता है, अगर उसको अखबारों से या किसी के जरिए से कुछ पता लगता है कि इससे इसमें जनहित मामला जुड़ा हुआ है तो वो भी निर्णय ले सकता है। लेकिन इन सारे के सारे मामलों में आप देख रहे हैं कि लोग न्यायालय के पास जा रहे हैं, न्यायालय कुछ नहीं कर रहा है, और जब लोग न्यायालय के पास जाएंगे और न्यायालय को लगेगा कि नहीं इसमें जनहित का मामला है तो वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि कानून बना करके उसे यह दायित्व सौंपा गया है। तो ऐसे में न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय को निर्णय ले देना ही पड़ेगा, टिप्पणियां करनी ही पड़ेंगी। तो यहां आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे धीरे 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 हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में न्यायालय की भूमिका बढ़ती चली जा रही। इसका मतलब है कि क्या समाज अपने लेवल पर कुछ ठीक करने की स्थिति में नहीं है, क्या सरकार अपने लेवल पर चीजों को सुलझाने की स्थिति में नहीं है, क्या प्रशासन भी एक प्रकार से पूरी तरह से न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करने में लगा हुआ है। तो ये एक नई चीज जो आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इस पर भी आपको थोड़ा विचार करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और सिविल सर्विस परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मित्रों, न्यूज में इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आज बहुत सी हैं और इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि आप लोग कहेंगे कि सर पिछले दिनों तो थोड़ी सी आपने कम क्लिपिंग्स दी थी लेकिन आपने तो ये सारी भरपाई कर दी। हाँ, आज क्लिपिंग्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कोई भी बेकार की क्लिपिंग्स में डालने से अपने आप को बचाता हूं। तो मित्रों, आज कई क्लिपिंग्स हैं, आप इन क्लिपिंग्स को देख लेंगे, इन पर मैं ज्यादा चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं। हिंदी की भी क्लिपिंग्स हैं और अंग्रेजी की भी क्लिपिंग्स हैं, और खासकर अभी पनामा पेपर्स के मामले को लेकर के आप बहुत से कुछ शब्द आप सुन रहे हैं, जैसे टैक्स हैवन शब्द सुन रहे हैं आप, शेल कंपनी सुन रहे हैं आप, ऑफशोर सेंटर ये सारे शब्द सुन रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग शब्द सुन रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी क्लिपिंग है दैनिक भास्कर की, जिसमें उन्होंने बताया है कि इन सब के मतलब क्या होते हैं, ताकि चीजें आपके दिमाग में और भी क्लियर हो जाएं। और दूसरी जो क्लिपिंग्स हैं दोस्तों, ढेर सारी हैं, वो आप देख लीजिएगा, उनके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से मेल मिले हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप अपने मेल को भी एक तरह से बौद्धिक विमर्श का, समस्याओं के समाधान का केंद्र बनाएं। उसमें इस तरह के इश्यूज आप उठाएं, केवल लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित इशू नहीं, बल्कि जो आपको एनालिसिस के बारे में बताया जाता है, जो आपको प्रिपरेशन के बारे में बताया जाता है, मेरी इस तरह की भी टिप्पणियां होती हैं, उन पर भी आप अपनी टिप्पणियां दें। अगर सही लगती हैं, उससे आपको फायदा होता है, आपकी दृष्टि क्लियर होती है, उस बारे में भी लिखें। अगर कहीं दृष्टि क्लियर नहीं होती है तो उस बारे में भी लिखें, और आप क्या चाहते हैं इस बारे में भी लिखें। तो हमारा ये जो ईमेल वाला जो सेक्टर है, नो डाउट कि अभी भी वो एक जीवंत सेक्टर है, लेकिन और भी अधिक जीवंत बन सकेगा। ईमेल में जैसे कि नम्रता भारती हैं गोरखपुर ने, उन्होंने गोरखपुर से, उन्होंने इंडिया 2016 खरीद कितना उपयोगी है, इसके बारे में उन्होंने पूछा है। देखिए, जनरली इंडिया जो हर साल इंडिया करके हिंदी और इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेजेस में ये किताब आती है, ये बहुत मोटी किताब है। उपयोगी है इस मायने में कि अगर आप उसका उपयोग करना जानते हैं तो, कि उसमें से कौन कौन सी चीजें आपके काम की हैं। और मैं ये आपको बता दूं, उसमें से मुश्किल से 5% चीजें आपके काम की होती हैं, बाकी चीजों के लिए आपके पास सेपरेट किताबें होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस और दूसरी चीजों के लिए आपके पास किताबें होती हैं। एक मायने में ये थोड़ी सी उपयोगी हो सकती है कि इसमें लेटेस्ट डेटा सरकार डालती है, सरकार का जो एक क्यों जो उपलब्धियां होती हैं उन सबका विवरण उसमें होता है। लेकिन जहां तक अनिवार्यता की बात है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत अनिवार्य नहीं है कि आपके पास ये होना ही चाहिए। यदि आप उपयोग करना जानते हैं तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप उपयोग करना नहीं जानते हैं तो फिर ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो मोटी सी किताब आपको बार बार चैलेंज करती रहेगी और आपको लगता रहेगा कि आप इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मेरी तैयारी भी नहीं हो पा रही है, राइट। अर्जुन परमार का है जूनागढ़ से। अर्जुन, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छा मेल भेजा है। उन्होंने लिखा है कि खासकर जो मैं अपने ऑडियो में एक दिन प्रत्यूषा बैनर्जी की जो सुसाइड मामले को लेकर के जो चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने दो लोगों के पास इस हिस्से को भेज दिया कि आप लोग इसे सुनिए, और उन लोगों ने सुना जो इस तरह का अटेम्प्ट कर चुके थे। और सुनने के बाद उन लोगों ने फिर अर्जुन को तुरंत फोन किया और इस बात के लिए आभार व्यक्त किया कि आपने बहुत अच्छी चीज हमको सुनने के लिए दी। तो अर्जुन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं से कहूंगा कि जहां भी उनको लगता है कि ये चीज मदद कर सकती है, तो प्लीज उन तक किसी न किसी रूप से यह सूचना भिजवाने की कोशिश करें। सेजल कुमार ने लिखा है कि उनके सिटी में ये जो AFEIS.com है, ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है और लगातार स्टूडेंट्स इसे सुनने लगे हैं। तो सेजुल, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसको पॉपुलर बनाने में तुम्हारी जो भूमिका है वो किसी भी मायने में कम नहीं रही होगी। तो इसके लिए बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद, और अपने इस तरह के कामों को लगातार आगे बढ़ाते रहो। मेरे पास एक मेल है मनीष झा का, उनकी परेशानी ये है कि वो कह रहे हैं कि सर, जब हम शुरू में क्लास से आए तो जब भी आपके बारे में पढ़ते थे या क्लिपिंग्स और ये सब सुनते थे, तो आपके का जो पूरा का पूरा दृश्य था वो सामने आ जाता है, लेकिन अब वो दृश्य नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, तो थोड़ी सी बेचैनी की, ऐसा क्यों हो रहा है। मनीष, इसमें बिल्कुल बेचैनी की बात नहीं, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। जो ताजी स्मृतियां होती हैं, ताजी स्मृतियां तो ताजी ही होती है ना, जैसे ताजे फल, ताजी सब्जियां, जब आप उनको पेड़ से तोड़ करके लाते हैं तो उनमें बहुत ताजापन होता है। धीरे धीरे तो झुलसेंगी ही ना, झुलसाएंगी, कुमलाएंगी, और कुमलानी भी चाहिए था, क्योंकि ताजेपन से ही जिंदगी चलती है, उसमें तो और भी नई चीजें आनी चाहिए ना। तो अब ताजी स्मृतियां आएंगी तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल कोई भी बात नहीं है। तो मित्रों, अब मैं कुछ और दोस्तों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं। उनमें है त्रयंबक नाथ इलाहाबाद से, राजकुमार झुंझुन राजस्थान से, विभा मिश्र गोंडा उत्तर प्रदेश से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, प्रदीप पांडे गोंडा से, मधुकर उर्मलिया और सागर मलिक शामली उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता है। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।